राम श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पारायण महंत श्री 1008 श्री क्षमाराम जी महाराज के मुखारविंद से प्रथम अध्याय श्लोक 47 42 ट्रेक में
परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने समय के गीता के अगाध चलते फिरते समुद्र थे। दूसरे शब्दों में यदि यह कहा जाए कि इस गीता समुद्र का जितना रत्न महाराज श्री ने डुबकियां लगा लगा करके साधकों के सामने उपस्थित किए हैं, ये अपने आप में विश्व को एक अनूठी देन है। हमने एक जगह की बात सुनी है कि एक महात्मा थे जिन्होंने गीता पर लिखने का विचार किया था और पहले अध्याय से कुछ लिखना तो चालू किया, वो भी गीता के जानकार थे। तब तक उनके पास गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता की टीका जिसका नाम साधक संजीवनी है प्राप्त की। साधक संजीवनी को पढ़ते ही गीता टीका लेखक महानुभाव का एकदम मन बदल गया और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि साधक संजीवनी जैसी गीता पर कोई टीका दूसरी हो नहीं सकती है और इससे अच्छा मैं लिख भी नहीं सकता हूं। उन्होंने लिखना बंद कर दिया और अपने अनुयायियों को साधक संजीवनी पढ़ने का निर्देश दिया। वो महानुभाव कभी स्वामी जी महाराज से मिले हो ऐसा लगता नहीं था। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के यदि दर्शन आज कोई करना चाहे तो भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका में कर सकते हैं। महाराज जी के इस टीका की विशेषता कौन क्या कहे, परंतु इतना अवश्य है कि जो जो इस गीता को पढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों इसका भाव स्वभाव वृत्तियां एकदम बदलती जाएंगी। एक माता जी की बात सुनी, उन्होंने अपने स्वयं के मुख से कही थी कि मेरे यहां एक बहुत अच्छा उत्सव था ठाकुर जी का। उत्सव में एक सज्जन ने घी का कनस्तर चुरा लिया और मुझे पता भी चल गया। मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति बड़ी घृणा हो गई। वो मुझे दिखता तो मेरी वृत्तियां एकदम क्रोध में भर जाती। मैंने कहा कुछ नहीं। समय बीता और महाराज श्री का गीता पर लिखा हुआ साधक संजीवनी का पुस्तकाकार स्वरूप मैंने पढ़ा तो ज्यो ज्यो मैं पढ़ती गई त्यों त्यों मेरा मन बदलते 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 इतना बदल गया कि मैं उस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाया और उसको बड़े प्रेम से भोजन कराया और मेरे मन से वो जो कुछ किया वो दम मन से निकाल दी। उसको देख करके कभी उसके बाद ये मन में नहीं आता कि इसने घी का कनस्तर चुराया था। गीता साधक संजीवनी पढ़ने के बाद यह तो एक दो उदाहरण है, असंख्य उदाहरण मिलेंगे ऐसे। बड़ा सौभाग्य है हमारा और बड़ा सौभाग्य है उनका जिन्होंने परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन किए। दर्शन ही नहीं, उनके प्रवचनों के गंगा स्नान से लाभ लिया। महाराज श्री ऋषिकेश में विराजते थे अपने अंतिम 5 वर्षों में, तो वहां एक तरफ गीता भवन के सामने भागीरथी गंगा बहती थी और इधर महाराज श्री की प्रवचन गंगा बहती थी। महाराज श्री के प्रवचनों में शायद ही कोई ऐसा प्रवचन होगा जिसमें गीता का कोई श्लोक या उदाहरण या उसका भाव न आया हो। यदि महाराज श्री के ऊपर ये शर्त लगा दी जाए कि आप गीता के भाव को छोड़कर के कोई प्रवचन कीजिए तो हम समझते हैं महाराज श्री ऐसा कर नहीं सकते थे, कारण कि जितना दर्शन हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने लिखा है वो सारा का सारा श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में आया हुआ है। चाहे सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, सभी की साधनाएं गीता में आई हैं। इसलिए गीता के बाहर कोई बोल भी नहीं सकता है। आइए आप हम सभी साधक संजीवनी के लेखक, हमारे हृदय पटल के प्रेरक, गीता मूर्ति, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखाई हुई साधक संजीवनी, उसका अक्षर से वाचन करते हैं। उनकी ये वाणी में तो गीता बहुत लोगों के पास प्राय घर घर में होगी श्लोकों की, और पुस्तकें भी होंगी, परंतु ऑडियो रिकॉर्ड जरूर होगा, होना भी चाहिए। परंतु जो पुस्तक पढ़ नहीं सकते हो वो भी यदि महाराज जी की गीता साधक संजीवनी की बातें सुनना चाहे, व्याख्या सुनना चाहे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सुअवसर है। वे इस ऑडियो के द्वारा महाराज श्री के भावों को सुनकर लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन सुनाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है, उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई है वे सब के सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वो वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहम आदिरी देवानाम महर्षिणांच सर्वशः। गीता दसवां अध्याय दूसरा श्लोक। अतः कितने भी बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्यादि दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये तीन प्रस्थान है, से सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है, कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थिर होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है। पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं, सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत है। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवा किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्मा के सिवा दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और उसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही हूं, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में चार जगह सातवें नवें दसवें और पंद्रहवें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। सातवें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। तात्पर्य है कि सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वो सब परमात्मा है। त्वम अक्षरम सदसत तत्परंचयत। संसार अपने राग के कारण दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। न हो तो एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होती है। हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल गया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने माने ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने अर्थात प्राणायाम की जरूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर दूसरा कहां से आए कैसे जाए। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशयम समग्रम माम, गीता समग्र की वाणी, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लग जाती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही योग हैं। शरीर अर्थात अपरा प्रकृति को लेकर कर्मयोग है, शरीरी माने परा प्रकृति को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर सातवें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में तो योग की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है, कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय है, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। योग है कर्म सु कौशलम, योग के सिवा कर्म कुछ नहीं है। दूरेण यवरं कर्म है, बुद्धि योगा धनंजय। कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्र पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। कर्म योग में भी दो विभाग है, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म कर्ण सापेक्ष है और योग कर्ण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकल्पता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है, और जो श्रोता का कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋणमुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा का तात्पर्य शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है, जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष कामक क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता निर्विकारता असंगता समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है मैं सदा जीवित रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास है नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली है। ये सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी अर्थात वर्तमान में भी हमारे से अलग ही है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग ही है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु अर्थात परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होते, वो सदा ही मिले हुए हैं और अभी भी हमारे से मिले हुए हैं। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। साधना में कोई आचार्य पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग ये क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्मयोग फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग ये क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग फिर कर्मयोग और फिर भक्ति योग यह क्रम मानती है। गीता कर्मयोग को ज्ञान की अपेक्षा विशेष मानती है, जैसा कि पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा भी है कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, जैसा कि तीसरे अध्याय के बीसवें श्लोक में कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादय अथवा यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, ऐसे उदाहरण मिलेंगे। पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोग्यतः। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग ये क्रम कहा है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक मानती है। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। क्षर माने जगत और अक्षर माने जीव दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच, पंद्रहवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में कहा है। पर भगवान अलौकिक है, उत्तम है, पुरुषस्त्वन्य है। क्षर को लेकर कर्मयोग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। छठे अध्याय का सैतालीसवां श्लोक देखा जा सकता है। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन जगत जीव शरीर शरीरी असत सत प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं, परंतु भक्ति में केवल भगवान ही है। वासुदेव सर्वम सदसच्चाहम अर्जुन इत्यादि। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है, मई चानन्य योगे न भक्ति रव्य विचारिणी, और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति ही बताया है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते। ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति ही प्राप्त होती है। मद भक्तिम लभते पराम, इस पराभक्ति से जानना देखना प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक देखा जा सकता है। भगवान अपने भक्त को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। 10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक देखा जा सकता है। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी कहा है, सैमे युक्त तमुमत है तेमे युक्त तमामता स योगी परमो मत है। ध्यान योग में भी भक्ति आई है, युक्त आसीत मत पर, 6 अध्याय का 14वां श्लोक। कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बतलाई है, युक्त आसीत मत पर। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति बताई है, यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक तक। भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है, 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। गीता का 7वां 9वां और 15वां अध्याय और 10वें अध्याय का प्रारंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें से 66वें श्लोक हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग भक्ति योग की, और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग ज्ञान योग की बात भी आ गई। तात्पर्य यह है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही है। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है, इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा न करे, दूसरों के मत को छोटा न माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरों के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति माने परम प्रेम की अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिशिष्ट के विषय में श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका है, न कोई पार पाता है, न कोई पार पा सकेगा और न पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में आ ही नहीं सकता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आ पाता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता, क्योंकि गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु उसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए, उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही थी और विचार भी उसी का ही किया, परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण समग्र स्वरूप और भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं है। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है, असंशयम समग्रम माम। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है, अतः आगे भगवत कृपा या संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं है, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही है, इसमें हमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोकों के अर्थ अन्वय पूर्वक न करने से उनमें कहीं कहीं कमी रह गई थी, अब श्लोकों का अन्वय पूर्वक अर्थ देकर उस कमी की पूर्ति कर दी गई। अन्वयार्थ में कहीं अर्थ को लेकर कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले की और बाद की व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उसको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। ये सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद के लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों का किसी प्रकार से अहित न हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों के हित की दृष्टि से लिखी गई है, विद्वता की दृष्टि से नहीं। साधक को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह न रखकर इस टीका को पढ़ें और इस पर गहरा विचार करें तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा, और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। विनीत स्वामी राम सुखदास। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथ जला गांधारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तक केशव। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।